अध्याय चौथा। पोम्पई से हिचहाइक करते हुए हम समुद्र तट पर स्थित ब्रिंडिसी नामक शहर में पहुंचे। अपने बचे खुचे पैसों को खर्च करके हम वहां से ग्रीक के एक द्वीप कोर्फू गए, जिसका वर्णन होमेर द्वारा लिखित महाकाव्य द ओडेसी में प्राचीन कोर्सायरा नाम से आता है। वहां पर वह प्रतिदिन जैतून और अंजीर के पेड़ों से भरी पहाड़ियों पर भ्रमण करने लगा। आयोनियन सागर को निहारते हुए मैंने एक अनार के पेड़ के नीचे बैठकर भगवद गीता, बाइबल और द बुक ऑफ टाओ का अध्ययन किया। मैं विभिन्न शिक्षकों और उनकी पुस्तकों से अधिकाधिक सीखने के लिए आतुर था। भूमध्य सागर से आ रही ताज़ी हवा में सांसें लेकर मैं प्रफुल्लित हो उठा तथा और अधिक चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित हुआ। फिर द्वीप को पार कर हम मुख्य भूमि पर पहुंचे और वहां से एथेंस की ओर हिचहाइक किया। सड़क से यात्रा करते हुए मैं यूरोप के अनोखे भूभागों, भाषाओं और परंपराओं का आश्चर्यपूर्वक अवलोकन कर रहा था। मैं मध्य पश्चिमी अमरीका से आया था और इसलिए यहाँ की विविधताएं मेरी दृष्टिकोण को और भी विस्तृत बना रही थी। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं अपने विचारों में खो गया। मैं इस जगत की वास्तविकता को उसी दृष्टिकोण से देख रहा था जो मुझे अपनी संस्कारों से प्राप्त हुआ था। क्यों हम मानवों में राष्ट्र, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की एक गहरी प्रवृत्ति होती है? हम सोचते हैं कि केवल हमारी स्थिति सही है और दूसरे या तो अजीब हैं या फिर हमसे हीन हैं। ऐसी दंभपूर्ण धारणाएं हमें संकीर्ण मानसिकता या सांप्रदायिकता के स्तर पर गिरा देती है, जिससे घृणा, भय, शोषण और यहाँ तक कि युद्ध जैसी विभीषिकाओं की भी त्रासदी पैदा होती है। मैंने प्रार्थना की कि मेरी यात्राएं मेरी मानसिकता को और अधिक व्यापक करें तथा अन्य संस्कृतियां जीवन, संसार और ईश्वर को किस रूप में देखती हैं, मुझे वो समझने का एक सहज और स्वस्थ दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। एथेंस पहुंचकर मैंने अपने परिवार को पत्र लिखा, उन्हें ये बताते हुए कि मैं कहाँ हूँ, इस यात्रा का मेरे लिए कितना महत्व है और मैं कैसे स्वयं को उनके निकट महसूस कर रहा हूँ, किंतु उन्हें ये बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वर्ष पतझड़ से आरंभ हो रहे स्कूल में वापस जाने को इच्छुक नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं कब वापस लौटूंगा। एथेंस में गैरी और मैं ये देखकर स्तब्ध हो गए कि वहां सड़कों पर पुलिस स्वचालित मशीन गन लिए गश्त लगा रही थी। हम समझ रहे थे कि हमारे लिए पेड़ों के नीचे सोने की अपेक्षा युवा छात्रावास में रैन बसेरा करना अच्छा रहेगा, लेकिन एक समस्या थी, हमारा पैसा समाप्त हो चला था। भले ही युवा छात्रावास में सस्ते थे, फिर भी हमारे पास उनके लिए भी किराया नहीं था। अंततः हमने अनुभवी और पक्के पर्यटकों का तरीका अपनाया, सरकारी अस्पताल में रक्तदान करके पैसा बनाना। उस समय रक्त निकालने के तरीके बहुत पीड़ादायक थे। उन्होंने हमें एक मेज से बांध दिया और बड़ी बड़ी सिरिंजों से रक्त निकालने लगे। हम दोनों लगभग बेहोश हो गए। एक नियम था कि रक्तदान के पश्चात हर रक्तदाता को एक गिलास संतरे का जूस दिया जाता था और उसे आधे घंटे तक प्रतीक्षालय में बैठना पड़ता था। ये देखने के बाद कि रक्तदाता अच्छा स्थिति में है, उसे पैसा दिया जाता था। प्रतीक्षालय में अपना समय काटते हुए गैरी और मैं अपनी बाह में हो रही पीड़ा सह रहे थे। गैरी ने दर्द से बेहाल होकर मुंह बनाया और कहा, पैसा कमाने का इससे अच्छा तरीका अवश्य होगा। हमने कमरों में चारों ओर देखा और पाया कि गिटार का बक्सा लिए एक फ्रांसीसी भी उसी पीड़ा को झेल रहा था। कुछ सीट्स छोड़कर एक स्विस लड़का वायलिन का केस लिए बैठा था और उसने भी अपनी बांह पकड़ रखी थी। मेरी हारमोनिका हमेशा की तरह मेरी बेल्ट से बंधी थी। हम संगीतज्ञों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। सभी को एक ही प्रेरणा मिली। बाद में पता चला कि उस स्विस लड़के को बचपन से ही शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण मिला था, किंतु किशोरावस्था में वो रॉक और ब्लूज बजाने लगा। इसी प्रकार फ्रांसीसी गिटार वादक ने भी शास्त्रीय फ्लेमेंको सीखा था, किंतु बाद में उसने लोक संगीत अपना लिया। अपने खून का पैसा लेकर हम सभी सड़क पर आए और एक दल बनाकर बगैर किसी पूर्वाभ्यास के ब्लूज संगीत बजाने लगे। 15-20 लोग हमारे चारों ओर एकत्रित होकर नृत्य करने लगे। कुछ ही समय में दर्जनों और आ गए। गैरी ने एक मांगी हुई टोपी में कुछ सिक्के डाले और हमारे गीत के सुर में सुर मिलाकर उन्हें उछालने लगा। श्रोता हमारी प्रस्तुति से इतना प्रसन्न हुए कि वे लगातार गैरी के टोपी में ड्रेचमस यानी ग्रीस की तत्कालीन मुद्रा ड्रेचमस फेंकते रहे। हमारा उत्साह बढ़ता गया और हम एथेंस की सड़कों पर संगीतज्ञों की टोली बनाकर एक लंबी धुन बजाते हुए चलने लगे और पीछे पीछे नाचती भीड़ का कारवां बनता गया। जब हम एक कोने पर रुके तो अनेक लोग और आ गए और गैरी को टोपी पैसों से लबालब भर गई। शाम होने पर हमने अपनी कमाई को बांटा और युवा छात्रावास में चल गए। हम रातों रात प्रसिद्ध हो चुके थे। हम जहां भी जाते मुस्कुराते और ताली बजाते ग्रीक लोगों की भीड़ हमें घेर लेती। वे हमें पसंद करने लगे। हमें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सच्चाई है। एक चौराहे पर जब हमारा संगीत हवा में गूंजा तो बूढ़े लोग तालियां बजाने लगे, युवा थिरकने लगे, बच्चे उछलने लगे और माताएं अपने बच्चों को संगीत की ताल पर झुलाने लगीं। उस सुहानी दोपहर में सभी मुस्कुरा रहे थे और टोपी पुनः लबालब भर गई। तभी अचानक सारी भीड़ छंट गई। हमारा संगीत थम गया क्योंकि हमारे चेहरों पर मशीन गने तानी दी गई थी। हमें बंदी बनाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पुलिस ने टोपी में रखा हमारा सारा पैसा जब्त कर लिया और फिर से ये अपराध न करने की चेतावनी दी। एक पेशेवर संगीतज्ञ के रूप में ये मेरे जीवन का आरंभ और अंत दोनों ही था। ये सोचकर कि आध्यात्मिकता का पालन करने के लिए हमें एक शांत स्थान की आवश्यकता है, पुलिस से बचाए कुछ पैसों से नाव का किराया देकर गैरी और मैं आइल ऑफ क्रीट चले गए। एगियन समुद्र के इराक्लियन बंदरगाह पर पहुंचकर हमने पश्चिमी तट तक जाने के लिए एक बस पकड़ी। वहां हम चट्टानों से भरे एक ऊंचे निर्जन और सुंदर तट जा पहुंचे जहां समुद्री जहाज नहीं आ सकते थे। वो स्थान प्राकृतिक चश्मों, बहती जलधाराओं, चरती हुई पहाड़ी बकरियों, रेतीले तटों और खुली धूप से भरा था। हमने कभी भी एक साथ इतनी गुफाएं नहीं देखी थी। विस्मित होकर हम रह गए और एक ऐसी गुफा चुनी जहां से भूमध्य सागर स्पष्ट दिखता था। यह स्वर्ग जैसा द्वीप व्रत ध्यान और प्रार्थनाओं के लिए पूर्णतः उपयुक्त था। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व में एक पहाड़ पर चढ़ता और सूर्यास्त होने तक ध्यान और प्रार्थना करता। दूर तक फैले सागर के निर्मल जल को देखते हुए आध्यात्मिक प्रबोध के लिए मेरी तृष्णा अप्रतिम रूप से तीव्र हो जाती। दूसरी ओर गैरी भी नीचे सागर के तट पर जाकर ध्यान करता। सूर्यास्त के पश्चात हम पुनः गुफा में मिलते और दिन भर के उपवास को सादी ब्रेड खाकर तोड़ते। रात को विश्राम के लिए हम पथरीली भूमि पर लेट जाते और सारे दिन के अपने अनुभव एक दूसरे को बांटते। इस प्रकार ध्यान करते हुए अनेक सप्ताह बीत गए। मेरी प्रार्थनाओं और ध्यान साधना ने आध्यात्मिक उत्कंठा की मेरी चिंगारी को अब धधकती अग्नि में परिवर्तित कर दिया था। पर्वत पर बैठे हुए मैंने उस अग्नि में अपने जीवन का सर्वस्व स्वाह होते देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवत प्राप्ति की लालसा में मैं खींचता जा रहा था, लेकिन नियति मुझे दोराहे पर ले जा रही थी। एक मार्ग पर मैं मात्र वही व्यक्ति बना रहता जो मेरी अब तक की पहचान थी। शिकागो के एक विशेष परिवार से आया अमेरिकी लड़का जिससे अपेक्षा की जाती थी कि वो कॉलेज जाकर डिग्री प्राप्त करे, किंतु वो हिप्पी बन गया। दूसरा मार्ग मुझे एक ऐसे जगत में ले जाता जहां सब कुछ बदलने वाला था। मुझे डर लगने लगा। मैं जानता था कि मैं एक ऐसा मार्ग चुनने जा रहा हूं जो मेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा, किंतु अब मुझे कोई नहीं रोक सकता था। मैं नहीं जानता था कि नियति मुझे कहां ले जा रही थी, किंतु मैं इतना अवश्य जानता था कि यदि मैं इस यात्रा में आगे बढ़ता रहा तो मुझे एक समूचा नया जीवन और नई पहचान मिलेगी, बाकी सब मुझे पीछे छोड़ना पड़ेगा। दिन ढलने लगा। सूर्य का नारंगी गोला समुद्र के मुख में प्रवेश कर रहा था। उसने सुनहरी कांति की एक चादर से लहरों को आवृत्त कर दिया और वे उसके स्पर्श से झूमती हुई नृत्य करने लगी। तट पर स्थित पर्वत स्वर्णिम आभा से चमक रहे थे। मेरे सिर के ऊपर आकाश का गुंबद गुलाबी, नारंगी और नीली छटा से दीप्त हो उठा था। अचानक मेरे हृदय से एक मृदुल किंतु प्रबल स्वर उभरा, भारत जाओ। भारत क्यों, मैंने सोचा। वो तो बहुत दूर एक अलग ही दुनिया है। उसके विषय में मैं बहुत कम जानता हूँ। मेरे पास नहीं के बराबर पैसे थे और नहीं मुझे मालूम था कि आगे क्या होगा, किंतु मुझे विश्वास था कि ये मेरे भगवान की ही पुकार थी। इससे पहले भी मैंने भगवान की उपस्थिति की अनुभूति की थी या अंतर्मन में उन कार्यों के लिए ग्लानि का अनुभव किया था जो मुझे भगवान से अलग कर रहे थे, लेकिन ये अनुभव अलग ही था। ये एक निःशब्द स्वर था जो मेरे हृदय के अंदर गूंज रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि ये मेरी या मेरे मन की आवाज़ नहीं अपितु भगवान के स्वर थे जो मार्गदर्शन हेतु की गई मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे थे। जहां एक ओर सूरज डूब रहा था, वहीं दूसरी ओर मैं अपने आत्मनिरीक्षण के समुद्र में डूबा हुआ पर्वत के शिखर से नीचे उतरने लगा। मुझे लगा कि प्रत्येक पग मुझे मेरी लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। गुफा में प्रवेश करने पर मैंने गैरी को ध्यान करते पाया। एक मोमबत्ती की ली झिलमिलाकर गुफा की दीवारों की और छतों को पीले प्रकाश से आलोकित कर रही थी। मैं गुफा के सामने पथरीली भूमि पर बैठ गया और अंधकार में डूबते आकाश को निहारते लगा। फिर मैंने चुप्पी तोड़ी। गैरी, आज मेरे साथ कुछ अद्भुत घटना हुई है। उसकी आंखें फैल गई। वो चिल्ला उठा, सही में मंक, आज मेरे साथ भी कुछ अद्भुत घटा है, मुझे बताओ। गैरी ने सितारों की ओर देखा। सूर्यास्त के समय मुझे एक आवाज सुनाई दी, अविश्वसनीय। क्या कहा उस आवाज ने? उसने कहा, वो फुसफुस आया, इज़राइल जाओ। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? असमंजस से कांपते हुए मैं उसके निकट आया। मैंने अभी अभी जो सुना था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहाँ? उसने कहा, इज़राइल जाओ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? गुफा के फर्श पर मैं सीधा बैठ गया। मुझे भी सूर्यास्त होते समय एक आवाज सुनाई दी। गैरी उछल पड़ा, सचमुच हम दोनों मिलकर इज़राइल जाएंगे? किंतु गैरी, ये कहते हुए मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था, उस आवाज ने मुझसे कहा, भारत जाओ। भारत? गैरी चीखा और चुप हो गया। हम दोनों कुछ न बोल पाए। गुफा में चुप्पी छा गई और सितारों के झुरमुट को देखने लगा। आकाश की ओर देखते हुए मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूं। गुफा में एक मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ को छोड़कर पूरा अंधेरा छाया था। मैं अपने सबसे प्रिय मित्र की ओर मुड़ा। कल मैं चला जाऊंगा, शायद सदा के लिए। काफी देर तक हम दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर गैरी ने चुप्पी तोड़ी। भारत हजारों मील लंबे मध्यपूर्वी रेगिस्तानों के पार है। मोमबत्ती की लौ से उभरी व्याकुल परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी। रास्ता खतरनाक है, मौत भी हो सकती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है मंक? वो आध्यात्मिक खोज नहीं, आत्महत्या है। कृपया रुक जाओ। क्यों नहीं तुम मेरे साथ इज़राइल आकर थोड़ा सा पैसा कमाते, फिर हम दोनों मिलकर भारत जाएंगे। कई मिनट बीत गए, मैंने विचार किया, किंतु वो आंतरिक स्वर मान नहीं रहा था। गैरी, मुझे विश्वास है कि ये भगवान की ही पुकार है, मैं रुक नहीं सकता। उसके चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई। तुम वहां कैसे पहुंचोगे मंक? मुझे लगता है कि यदि मैं पूरब की ओर हिचहाइक करता रहूंगा तो एक न एक दिन उस धरती पर पहुंच ही जाऊंगा जहां मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वो मेरे दिल की बात समझ गया। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क कर उसकी दाढ़ी को भिगो गया। तुम्हें अपने भाग्य के अनुसार चलना होगा, वो धीरे से बोला। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। बुझती मोमबत्ती के अंतिम प्रकाश में मैं गुफा के फर्श पर आराम करने के लिए लेट गया। रात्रि के सन्नाटे में असीमित सितारों को निहारते हुए मेरा मन आकांक्षाओं से झूमने लगा। सूर्योदय हुआ और मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मेरी गैरी गांव की सड़क के किनारे बने बस स्टॉप तक मुझे विदाई देने के लिए आया। कुछ किसानों के साथ खड़े होकर हम बस की प्रतीक्षा करने लगे। अब बिछोह की वेदना गहराने लगी। हमारे बीच भाइयों जैसा दुर्लभ प्रेम था। बचपन से हम एक साथ जीवन के रहस्यमय परिवर्तनों से होकर गुजरे थे। चाहे वो हाईलैंड पार्क का हमारा घर हो, कैलिफोर्निया में हिप्पियों के निवास स्थान, फ्लोरिडा में हमारे कॉलेज, या यूरोप के अनेक स्थान, हमने साथ साथ अनेक रातें सितारों को देखते हुए बिताई थी। हम मिलकर ये सोचते थे कि मनुष्य क्यों घृणा और खून खराबा करता है। हमने मिलकर वियतनाम युद्ध और अश्वेतों के साथ दुर्व्यवहार का विरोध किया था। हमने जन अधिकारों को साकार करने का और एक ऐसे संसार का सपना देखा था जो घृणा से मुक्त और गीत संगीत से भरा होगा। अपनी विभिन्न यात्राओं में हम एक दूसरे की मित्रता और सहारे पर और अधिक निर्भर हो गए थे, किंतु अभी वो निर्णायक क्षण आ चुका था जब हमें एक दूसरे से जुदा हो जाना था। उस पुरानी बस को निकट आता देख मेरे मन में गैरी को कुछ उपहार देने की इच्छा जागृत हुई, कुछ ऐसा जो मेरे लिए सबसे मूल्यवान था। यह सोचते हुए कि कैसे मैं अपनी भावनाओं का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करूं, मेरे मन में एक विचार आया। मैंने अपनी पुरानी काली जैकेट उतारी और गैरी को उपहार स्वरूप दे दी। मैं पिछले कई वर्षों से प्रतिदिन उसे पहनता आ रहा था। जो लोग मुझे जानते थे उनके लिए वो जैकेट मेरी पहचान से जुड़ा एक अभिन्न अंग था। साथ ही वो मेरी सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति भी थी। जैकेट, गैरी चिल्लाया। हम दोनों हवा में उड़ते पत्तों के समान थे। कोई नहीं जानता था कि हवा कैसे और कहाँ हमें उड़ा ले जाएगी। हमने हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे को छाती से लगा लिया। अवरुद्ध कंठम मैंने कहा, यदि भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। मुझे बस में एक सीट मिल गई। जैसे ही बस उबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खाते आगे बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर देखा, गैरी अकेला खड़ा था। मैं जानता था कि उसे अपनी जैकेट देना मेरे लिए अपने कल और आज की पहचान को त्यागने जैसा समान था। मैंने ये भी निश्चय किया कि मैं अपने उपनाम मंक को त्याग कर अब से अपने मूल नाम रिचर्ड का उपयोग करूंगा। मुझे आभास हो रहा था कि अनजान भारत की यात्रा मेरी शाश्वत पहचान को पुनः प्राप्त करने की यात्रा साबित होगी। यहाँ चौथा अध्याय समाप्त होता है।